فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ جب وہ آ گئی ملکہ تو اس سے فرمایا کیا ہے اس طرح کا یہ تیرا تخت؟ اب جب سوال میں بھی دانائی ہے، سوال بھی بڑا حکمت والا، یہ نہیں پوچھا یہ بتاؤ کیا یہ تمہارا تخت تو نہیں ہے؟ اب اگر ایسے کہا جاتا تو سوال میں ہی تھوڑا سا ہنٹ تو مل جانا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میرا بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ بتاؤ یہ تمہارا ہے، ایسا پوچھا جاتا تو تب بھی ہنٹ مل جاتا، احاکت عرش کی، کیا اس طرح تمہارا تخت ہے؟ تو سوال میں بھی حکمت، کہتے ہیں سوال آدھا علم ہوتا ہے، تو سوال بھی انسان کو پوچھنا چاہیے نا، تو سمجھدار قسم کے سوال پوچھنے چاہیے، ادھر ادھر کے نہیں۔ تو پہلے تو کہا بائبل میں تو یہ ہے کہ یہ ملکہ جو تھی جب سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں آئی تو ٹھاٹ باٹ اور ان کا اعزاز اور حکومت دیکھے تو دنگ رہ گئی، کہنے لگی ہمیں تو جتنا اس آپ کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ تو بہت ہی کم تھا، اور خوش قسمت ہیں جو آپ کے پاس رہنے والے ہیں اور آپ کی حکمت بھری باتیں سننے والے ہیں، اتنی متاثر ہوئی تھی، یعنی اس کو پتہ تو چل گیا تھا۔ قالت کأنہ ہوا، اچھا وہ اتنی زبردست ذہانت والی عورت تھی نا، اس نے اتنا ڈپلومیٹک جواب دیا، اس نے یہ نہیں کہا یہ تو میرا ہی ہے، کیونکہ ہو سکتا تھا اس کا نہ ہو، کیا پتا اس کا نہ ہو، ویسا ہی ہو لیکن اسے ملتا جلتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ بالکل ویسا تھا تو ہو سکتا ہے وہی ہو، مگر کوئی بھی چیز کنفرم تو نہیں ہے نا، اس لیے اس نے ایسا جواب دیا جس میں دونوں باتوں کا امکان تھا کہ ہو بھی سکتا ہے میرا، اور میرا یہ ہے ہو سکتا ہے یہ میرا ہی ہے، اور ایسے بھی نہیں کہا کہ میں تو پہچانتی نہیں ہوں، پتہ نہیں کس کا میرا کہاں سے ہو سکتا ہے، نہیں، کہنے لگی ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ وہی ہے، ایسے ہے جیسے کہ یہ وہی ہے، سبحان اللہ، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، ہم تو دے دیے گئے اس سے پہلے ہی علم، یعنی آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی ہم تو مان گئے، ہمیں تو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہت عطا کی بھی ہے، وکنا مسلمین، اور ہم تو ہمیں اطلاع جب مل گئی تھی ہم جان گئے، ہم تو مطیع ہو کے ہی آئے ہیں، ہم اسی وقت مان گئے تھے یہاں پہ آنے سے پہلے ہی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی نا کہ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے نا وہ مرغوب ہو، دیکھیں یہ ساری اسٹریٹجیز اس کو دین کی طرف لانے کے لیے تھی، اب ظاہر ہے جس پائے کے خود سلیمان علیہ السلام تھے اور وہ ملکہ تھی، اسی طرح کی تبلیغ کے بھی میتھڈز سلیمان علیہ السلام کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک بڑی حکومت کی مالک تھی، ایک کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، وہ ایک کوئین تھی جس کے عوام اس کے ساتھ تھے اور بڑی خوشحال مملکت کی کوئین تھی، تو اس کے لیے ایسی ہی چیز کرنا ضروری تھا جس سے وہ متاثر ہوتی، کیا ہم بھی جب ہمارے پاس کوئی کرسی ہوتی ہے کوئی عہدہ ہوتا ہے ہم بہت ایزیلی اپنے جو انڈر لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرف اتنا کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو کام کرنے والے ہیں وہ کوئی کافر ہیں کوئی مشرک ہیں، تو آپ ان کو بڑی آسانی سے ان کو اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے انڈر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، آپ کہیں کے مینیجر ہیں یا آپ کہیں جگہ پہ ہیں، آپ دین کا پیغام ضروری نہیں آپ بول کے اسلام اسلام کر کے اور وہ ان کو ترجمے سنا کے پھر ہی دے رہے ہو، آپ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز سے ان کی لیول پہ جو لیول جس پہ دوسرا ہے اس کے لیول کی بات کے ساتھ اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو خود سوچنا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے، اس کی سمجھ کا، اس کی عقل کا، اور یہ کیسی بات کو یعنی زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اس بات سے ہوگی وہ آپ کر سکتے ہیں، یہاں پہ ان کو پتہ ہے یہ ملکہ ہے اس کے مطابق کی چیز کی کہ اس کو وہ امپریس ہو جاتی، اور اس نے کہہ دیا کہ ہم ایسے ابھی نہیں امپریس ہوئے، کوئی اچانک اس وقت نہیں، ہم تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شاندار طاقت قوت دی ہے، اور یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتا تھا، خود تو نہیں کسی انسان کے اندر اتنی طاقت ہو سکتی، اور سلیمان چاہ رہے تھے علیہ السلام کہ وہ اس کا اعتراف کرے، उसको समझ आ जाए कि ये नबी का मोजज़ा हो सकता है। तो वो तो पहले ही मान चुकी थी कि ये अल्लाह के नबी हैं। वसद्दहा मा कानत ताबुदु मिन दूनिल्लाह, और उसको रोका था उसने जिनकी वो पूजा करती थी अल्लाह के सिवा, और रोका था उसको जिसकी जिनकी वो पूजा करती थी अल्लाह के सिवा। इसके दो माने हो सकते हैं। जिनकी वो इबादत करती थी यानी सूरज की इबादत, उसने उसको रोक दिया था इबादत करने से अल्लाह की, ठीक है, उन चीज़ों ने रोका हुआ था। दूसरा इसका माना ये हो सकता है कि वो जिनकी बंदगी करती थी, जिनकी इबादत करती थी अल्लाह के सिवा, उनसे उसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रोका। वसद्दहा, और उसने रोका उसको, किसने? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और उसने रोका उसको किसने? पहली बात क्या थी? वो जिनकी वो इबादत करती थी, उन्होंने अल्लाह की इबादत से रोक दिया। तो एक के अंदर ये माना आया, जब हम कहेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रोक दिया उसको शिर्क से, तो इसका मतलब वो अभी ही मुसलमान हो गई। और दूसरे में ये है कि इस चीज़ ने उसको रोका हुआ था, सूरज की इबादत ने उसको रोका हुआ था, इसकी वजह से वो अल्लाह के सिवा औरों की इबादत कर रही थी, तो फिर इसका मतलब होगा अभी मुसलमान नहीं हुई। मगर ये बताया जा रहा है कि क्यों वो अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ की इबादत करती थी, क्योंकि उस तरीके ने उसको रोक रखा था। उस तरीके ने कैसे रोक रखता था, इसकी दलील में अगली बात भी है, इन्नहा कैनत मिन कौमिन काफिरीन, इसलिए कि वो काफिर कौम से थी। वो उसकी ब्रॉट अप ही ऐसे हुई थी, वो उस माहौल में थी जिसमें के सभी सूरज की इबादत करते थे, तो इस चीज़ की इबादत ने उसको अल्लाह की इबादत से रोक दिया था। इस इबादत ने, इस तरीके ने, इस माहौल ने, उन लोगों ने जो काफिर कौम के अंदर वो पली बढ़ी थी, इसी ने उसको रोका हुआ था। वो वहीं पैदा हुई, वहीं पे जाहिर है उसने यही देखा था हमेशा से, तो उसी के अंदर वो फिर परवान चढ़ी तो इसी के ऊपर रही। तो इस चीज़ ने इस्लाम का रास्ता रोक दिया था उसके लिए, ठीक है। और आज भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर खैर है, और अगर आप उनके सामने दीन को सही तरीके से पेश करें तो वो मुसलमान हो सकते हैं और हो रहे हैं, ख़ास तौर पे वेस्ट में, क्योंकि इनके ज़्यादा मसला और कुछ नहीं होता, सिर्फ ये मसला है इनका कि ये अक्सरियत का, कि ये ऐसे घरानों में पैदा हुए जहाँ पे इन्होंने शिर्क ही देखा, शिर्क में पले बड़े, और इनको कभी किसी ने कोई पैगाम ही नहीं दिया, तो वो उसी के ऊपर ही सारी ज़िंदगी रहते हैं। लेकिन जब उनमें से किसी के पास हक आता है, सच्चा पैगाम आता है, तो वो मान जाते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि हम हक का पैगाम उनके सामने रखें और उनको बताएं। तो इसके लिए सही तरीके से पेश करना भी ज़रूरी है, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़ी हिकमत के साथ चले। और ये भी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि देखें ये काफिर कौम में पैदा हुआ है। अगर हम नफ़रत के साथ ही शुरू करते हैं, काफरों के अंदर ये तो खुद ही काफिर हैं, ये तो ऐसे, तो फिर आप उनको पैगाम कैसे देंगे? देखिए सुभान अल्लाह, यहाँ पे ये बात हमें बताती है इन्ना कैनत मिन कौमिन काफिरीन, कि ये एक पॉइंट है, ये एक हुस्ने ज़न रख के आप चलें जब तबरीक करें कि देखें मैंने इनका बेचारों का क्या कसूर है, ये तो इसी के अंदर पैदा हुए ना, इनको किसी ने पैगाम नहीं दिया, और हम नफ़रतों के साथ ये ऐसे, ये ऐसे, ये वो, ये तो हमारे खिलाफ साजिश ही, ये तो इतनी बातें कर देते हैं, उसके बाद पैगाम तो हमारा कहीं पीछे ही रह जाता है, हम बस साजिशें ही ढूंढने में लगे रहते हैं। कभी उसने जन के साथ भी आपने तबलीग करके देखी? तो हमेशा जब तबलीग करें तो उसकी पिछली ज़िंदगी को ज़रूर सामने रखें। ये देखें इनके लिए भी ईजी नहीं है, और ख़ुद को उन शूज़ में रख के देखें कि हम अगर खुदा ना खास्ता ऐसी जगह पर होते तो हमारे लिए कितना मुश्किल होता, और फिर पूरे अपने घराने, ख़ानदान, अपने पूरे जिस जगह पे ब्रॉट अप हुई, जिस माहौल के अंदर आँख खोली, उस सब को छोड़ के, अपने सारे तरीक़ों को छोड़ के, اپنے سارے پیاروں کی مخالفت لے کر اس طرف آنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا. تو ہم ان کو بھی تو پھر ویسے ہی سمجھے نا کہ ان کے بھی لیے بھی تو کتنا مشکل ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ملکہ جو تھی اس کے اندر خیر ضرور تھی, اس کے اندر بھی ایسا تکبر اس کے اندر بھی نہیں تھا کہ میں کیوں مان لے جاؤں, میں کیوں ان کے اوپر وہ کروں. اور جس میں تکبر نہیں ہوتا حق کو صرف وہی بندہ پا سکتا ہے جس میں تکبر ہو. اب یہ تو ایک ملک کی ملکہ تھی, آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے مکہ کے اتنی سی بستی کے سردار ہو کے ہی ان کے دماغ اتنے تھے. ابو جہل کو دیکھ لیں, ابو لہب کو دیکھ لیں, ان کے دماغ آسمانوں کے اوپر تھے, وہ تو کسی بات کو سنتے نہیں تھے. اسی طرح فرعون کو دیکھ لیں, ان فرعون تو خیر کافی زیادہ پاورفل تھا, لیکن آپ یہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم سے بڑی بڑی قومیں گزر چکی ہیں, تم سے زیادہ تمدن والی, تم سے زیادہ ٹیکنالوجی والی, تم سے زیادہ بڑی طاقتور قومیں گزر چکی. ان کا انجام دیکھو پھر کیا ہوا تھا جب انہوں نے تکبر کیے تھے. تو یہ مکہ کے جو سردار تھے ان کو بھی دکھا دیا کیا کہ دیکھو جب حق کی انسان کے اندر طلب ہو اور جب اس کی فطرت سلیم اور تکبر نہ ہو تو وہ حق تک پہنچ ہی جاتا ہے. اور دیکھو وہ ملکہ ہو کے بھی مان گئی, اس نے تکبر نہیں کیا. اسی لیے وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے نا کہ ہم مسلم ہو گئے. قال لها قيل لها لا تدخلي الصرح, تو اس سے کہا گیا اب داخل ہو جا محل میں. اب بھی سلیمان علیہ السلام کی ایک حکمت کی اسٹریٹجی تھی. دیکھیں اب انہوں نے ایک اور طرح سے ملکہ کو پیغام دیا ہے, سبحان اللہ, بہت ہی زبردست طریقہ. آپ اس کو دیکھیں, فلما رأت ہو حسبت ہو لجتن, جب اس نے دیکھا اس کو تو حسبت ہو لجتن, اس کو ایسے لگا یہ پانی ہے. اس لیے کہ محل جو تھا اس میں جب داخل ہونے کے لیے کہا تو وہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ شیشہ اتنا فائن تھا, اس کے نیچے حوض تھا, اس کے نیچے پانی تھا سارا. اور وہ شیشہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی, اب آج کے دور کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ چلتے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلا آگے شیشہ ہے تو جا کے شیشے میں ٹکرا جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا, وہ اتنا شفاف شیشہ ہوتا ہے. تو اسی طرح زمین پہ شیشہ تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا زمین پہ شیشہ ہوگا. اب اس کو لگا کہ یہ شیشہ ہے. بعض کہتے ہیں وہ اتنا فائن شیشہ تھا کہ وہ پانی لگ رہا تھا, لیکن پہلی بات زیادہ صحیح لگتی کہ نیچے پانی تھا اوپر شیشہ تھا. تو اب ایک نیچرل بات کیا ہوتی کہ انسان جب پانی میں جانے لگتا ہے تو اپنے ظاہر کپڑا اوپر کرتا ہے. وَقَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا, اور تو اس نے کھول لی, ساقین تھا نا پنڈلیاں دونوں, اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول لیا, یعنی کہ اپنا کپڑا اوپر کیا تاکہ میں پانی میں جا رہی ہوں کپڑے نہ گیلے ہو جائیں. سبحان اللہ کیسا خوبصورت محل ہوگا, کیسا خوبصورت کہ سبحان اللہ جس کے اندر ایک ملکہ جو اتنی ذہین ہے اس کو بھی نہیں اندازہ ہوا کہ یہ پانی نہیں ہے, یہ تو اس کے اوپر شیشہ ہے. اللہ اکبر. قال انہ صرح ممرد من قواریر, تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو محل ہے شیشے کا بنا ہوا, پورا محل ہی شیشے کا تھا, فرش بھی اور اس کے ارد گرد بھی سارا. سبحان اللہ, آج بھی بادشاہوں کو آپ دیکھیں کسی کے پاس ایسا نہیں ہے کہ انسان دنگ ہی رہ جائے ایسے محل دیکھ کے. اب وہ ملکہ خود اتنی بڑی ملکہ ہے, عام کوئی بندی نہیں ہے, اور وہ دیکھ رہی ہے کہ میری تو مملکت کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے, اور کس کی کیسا زبردست ان کا محل ہے. اس کو بتایا گیا پانی نہیں ہے یہ تو شیشہ ہے. اب ملکہ شرمندہ ہو گئی. آپ دیکھیں نا کہ کتنی انسان کے لیے امبیرسنگ بات ہو جاتی ہے کہ وہ اٹھا کے ایکسپیکٹ کر رہی ہے شیشہ اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو اس سے کیا میسج تھا جو سلیمان علیہ السلام نے دیا کہ ملکہ تم جتنی مرضی ذہین ہو جاؤ ٹھیک ہے, تم بڑی ذہین ہو, لیکن تم اصل اور نقل کو پہچان نہیں سکی, تم نے دھوکہ کھا لیا. ایک چمکتی ہوئی چیز کو دیکھے تم نے اس کو پانی سمجھا, وہ پانی نہیں تھا, وہ تو شیشہ تھا. اسی طرح جس کو تم خدا سمجھ رہی ہو وہ ایک چمکتی ہوئی چیز تو ہے لیکن وہ خدا نہیں, تم نے اس میں بھی دھوکہ کھایا. یہ تھا اصل میسج جس کو وہ سمجھ گئی. سبحان اللہ, کو وہ ذہین تھی نا, سمجھ گئی. تو قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لرب العالمین. اسی وقت اس نے ڈکلیئر بھی, پہلے تو ایک بات ہے نا, پہلی والی بات میں میں نے آپ کو یہاں پہ آیت نمبر 43 میں آپ کو بتایا کہ اگر تو ہم کہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے روک دیا اس کو عبادت کرنے سے, تو اس کا مطلب ابھی مسلمان ہو گئی تھی. اگر ہم یہ کہیں کہ ان چیزوں کی پوجا نے, اس طریقے نے, سورج کی پوجا نے اس کو روک دیا تھا اللہ کی عبادت کرنے سے, تو کہ وہ عبادت کرتی, جن کی وہ عبادت کر رہی تھی اللہ کے سوا, ان چیزوں نے روکا ہوا تھا اس کو اللہ کی عبادت سے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ مسلمان ہوئی نہیں تھی, ڈکلیئر نہیں اس نے کیا تھا, بلکہ اب جا کے وہ مسلمان ہوتی. تو صرف تھوڑا سا ہی فرق کیا اس کے اندر کہ اب جا کے وہ کہتی ہے میں اسلام لے آئی. اب دیکھیں آپ یہاں پہ اسلام کا لفظ ہے کہ نہیں, ہم کہتے ہیں اسلام تو پتہ نہیں آج کا دین ہے, نہیں, اسلام تو اس وقت سے اسلام ہے جب سے آدم علیہ السلام آئے, تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دیکھ لیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پتہ تھا, ہزاروں سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی دنیا میں, اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے سلیمان علیہ السلام تھے, اس وقت سے ان کو پتہ تھا. تو سب پیغمبروں کا دین سیم ہے, ان کا پیغام سیم ہے, توحید کا پیغام, اور سبھی سے اسلام چل رہا ہے. اسلام سب سے اینشینٹ ریلیجن ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا ہماری بت پرستی سب سے اینشینٹ ہے, نہیں, اسلام تو آدم علیہ السلام سے, ان کا بھی یہی پیغام تھا. تو وہ کہتی ہے میں اسلام لے آئی ماں سلیمان, یہ نہیں اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر میں اسلام لے, میں ان کی مطیع ہو گئی. اسلام لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, سرنڈر کر دینا, مطیع ہو جانا, میں ان کی مطیع ہو گئی, نہیں, مع سلیمان, سلیمان کے ساتھ اللہ کی مطیع ہو گئی جو رب ہے جہانوں کا. اور اس نے یہ اعتراف کیا کہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ, اور یہ ظلم کیا تھا, عوام پہ رایا پہ ظلم نہیں تھا, بلکہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے, شرک. تو اس نے کہا میں نے شرک کر کے بہت بڑا ظلم کر دیا. تو اب دیکھیں تبلیغ کا انداز بھی آپ نے دیکھا, تبلیغ کا انداز یعنی جس کی جتنی ذہنی سطح ہے اس کے مطابق اس کو تبلیغ کی, جس کا اب وہ زبردست ذہن والی تھی, ذہین تھی, تو اس کو میسج بھی ایسے ہی, کوئی اور ہوتا تو اس نے کہنا تھا یہ کیا بات ہے, وہ کیا ہے, یہ تو اس کو تو سمجھ ہی نہیں آنی تھی کہ یہ اس طرح کی کوئی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے انہوں نے, اس کی آنکھیں کھل گئیں, انہوں نے ثابت کر دیا کہ انسان عقل سمجھ ہونے کے باوجود دھوکہ کھا سکتا ہے. تو لیکن اس کے بعد اصل بات یہ ہے کہ انسان سمجھ جائے اور اس چیز کو پہچان لے اور اعتراف کر لے. وہ سورج کی عبادت سے باز آ گئی, اس نے شرک کو چھوڑ دیا اسی وقت. اور جو سلیمان علیہ السلام نے سمجھانی تھی بات وہ خوب سمجھ گئی. اور دیکھیں ہمیں بھی جس لیول پہ بھی ہم ہوتے ہیں نا, اور جن لوگوں سے ہم نے بات کرنی ہوتی تبلیغ کے لیے, ہمیں ان کا ذہنی لیول دیکھ کے اور ان کا مقام اور مرتبہ پیش نظر رکھ کے پھر اس کے بعد ہی ان سے بات کرنی چاہیے. جس کا کوئی سٹیٹس ہے اس کے مطابق اس کو تبلیغ کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو, اگر وہ کافر ہے لیکن کہیں کا بادشاہ ہے تو اس کو ڈی گریڈ کر کے اسے بات کر رہے ہیں, اور اس کو حقیر کر کے تم کیا کافر ہو تو تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں, اور تم نہیں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جس لیول پہ ہے اس کے مطابق ہی اس سے بات کی جائے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ تم کیا آ گئی ہو اور سیدھی طرح اسلام لے کر آؤ, اور یہ بڑی عزت سے اس کو محل میں بھی لے کے جا رہے ہیں, بڑی عزت کے ساتھ اس کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں اور اس کو بتا بھی رہے ہیں. تو ہم تبلیغ کو سمجھیں کہ تبلیغ کیسے کرنی ہے, یہ بھی ایک انداز ہے تبلیغ کرنے کا. اور پھر اپنے جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس ان کو یوز کریں تبلیغ کے لیے. اگر ہم کسی کو ایسے لیول پہ کوئی ہے اس کو مرعوب کر سکتے ہیں کسی چیز سے, تو اس سے مرعوب کرنے میں کوئی حرج نہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ویسے آپ نے منع کیا ہے ایسی چال چلنے سے جس میں تکبر ہو, اکڑ ہو, اس طرح. لیکن جب ایک صحابی جنگ سے پہلے اس طرح سے اکڑ کے چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ دشمن کو دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ دشمن کے اوپر رو پڑے. سمجھ آئی بات؟ تو ایسے ہم اگر کوئی چیز سے ساتھ متاثر کر سکتے ہیں تو دین کی طرف لانے کے لیے، اس چیز کے کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اگر یہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے تو اس کو یوز کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ مثلا دیکھتے ہیں کہ وہ کسی گاڑیوں سے متاثر ہوتا ہے، وہ کوئی بڑی سواری سے متاثر ہوگا، وہ اس کے بعد میری بات سنے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی اعلیٰ مقام پہ ہے، تبھی وہ بات سننے کو. اب ملکہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا یا عام آدمی مجھے بلا رہا ہے تو وہ کبھی آتی نہیں آتی نا. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ کیا چیز ہے تو پھر ہی وہ آئی نا اپنے سارے اپنے لوگوں کے ساتھ. اور پھر اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار یا سردار قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر محنت کرنے کو پریفر کرتے تھے، یا بہت اس کے حریص ہوتے تھے کہ ان کے اوپر میں محنت کر لوں. اس لیے کیونکہ جب بڑے کوئی ہوتے ہیں وہ دین کی طرف آ جائیں، وہ اسلام لے آئیں، تو ان کی رایا خود بخود لے آتی ہے. اسی طرح آج کے دور میں اگر کوئی مالدار ہے یا کوئی سیلیبریٹی ہے یا کچھ ہے، وہ اگر ایمان لے آتا ہے یا وہ اگر دین کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے جتنے فالوور، اس کے فین، اس کے وہ سب اس طرف آ جائیں گے. تو اس چیز کو بھی نہیں مطلب نظر انداز کرنا چاہیے کہ ہم کیوں ان کو کریں، چھوڑو ان کو، یہ تو ہیں ہی ایسے، یہ تو انہوں نے کبھی ماننا ہی نہیں. نہیں، ان کے اوپر ورک کریں، ہو سکتا ہے وہ اگر اس طرف آ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے. وہ ان کے اوپر محنت کرنے سے بھی کبھی کترانا نہیں چاہیے. یہاں تک سلیمان علیہ السلام کی اور ملکہ سبا کی کہانی مکمل ہوئی. اور آپ دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے سبق ہیں، اور اس کو آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو کئی چیزیں اور سمجھ آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے بعد کیا ہوا. پھر وہ بعضوں نے لکھا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام نے شادی کر لی اس کے ساتھ، یہ ہماری ہدایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ آگے نہیں کوئی بتایا گیا اور نہ ہی ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بائبل وغیرہ میں بھی یہ سٹوری ہے موجود، لیکن اتنا انہوں نے کرپٹ کر دیا ان چیزوں کو، انہوں نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا. سلیمان علیہ السلام پہ اتنے بہتان باندھے، وہ تو پہلے ہی شادی کرنا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے اس کو بلایا تھا، وہ تو پہلے یہ بہت گھٹیا باتیں پیغمبروں کے بارے میں بھی انہوں نے کی ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ تاکہ وہ پھر کہیں کہ دیکھو پیغمبر ایسے ہوتے ہیں تو پھر ہم اگر یہ کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. یعنی پیغمبروں کی بھی کیریکٹر اسیسینیشن انہوں نے کی ہے، ان کو اپنے پیغمبروں کی بھی عزت کا خیال نہیں ہوتا. کسی اور کے پیغمبر کو کیا یہ کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جو باتیں کرتے ہیں انہوں نے تو کرنی ہی ہے، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا. ان کو عزت ہی نہیں اپنے پیغمبروں کی، احترام کا پتہ نہیں جس احترام کے وہ لائق ہیں. آگے اب سمود کی کہانی اور لوط علیہ السلام کا قصہ، یہ مختصراً بتائی گئی، لیکن سمود کی کہانی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مگر کچھ حقائق جو یہاں پہ بتائے گئے نا وہ پہلے نہیں آپ نے پڑھے، تو وہ آج ہم دیکھیں گے. اور دوسری بات یہ ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں ابھی ہم نے ایک ایسے بادشاہ کی کہانی پڑھی ہے جن کے پاس اتنا کچھ تھا لیکن وہ شکر گزار تھے. پھر ہم نے ایک ایسی ملکہ کی کہانی پڑھی ہے جس کے پاس اتنا کچھ تھا لیکن اس نے جب اس کے سامنے حق پیش ہوا تو وہ کیسے جھک گئی اور کیسے اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور تکبر ذرا بھی نہیں کیا اتنی بڑی سلطنت کی ملکہ ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے. اور تیسری اب مثال آ رہی ہے ان کی جن کے پاس بہت کچھ تھا لیکن جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو وہ اپنے تکبر کے اندر اور اپنی بڑائیوں میں اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. ان کی مثال ہے. تو تینوں طرح کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. شکر گزاری کی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا لیکن پھر بھی جھک کے رہنا. پھر دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا اور اگر نہیں پتا تھا تب بھی تکبر نہیں کیا اور مان گئے جو ہی پتہ چلا. اور پھر تیسری، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا لیکن اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی. تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم ان میں سے کس مثال کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے ہم بادشاہ نہیں ہیں لیکن ہمیں کوئی بادشاہوں سے کم نہیں نعمتیں ملی نہیں، بہت ملا ہوا ہے، بہت ملا ہوا ہے. اب گنے بھی تو گن نہیں سکتے، ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چھت کے نیچے رہتے بھی ہیں اور پہنتے اوڑھتے بھی ہیں، سب کچھ ہمارے پاس بادشاہوں کی طرح کا ہی ہے. اور سب سے پہلے تو ہماری یہی سب سے بڑی ناشکری ہے جب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب ہے تو آپ نے سب کچھ ہی زیرو کر دیا، تو آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ہی جھٹلا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، سب کے لیے اوپن ہے یہ آیت، इतनी नेमत हैं, इन ताउदु नेमत अल्लाह ही ला तो सोहा, तुम गिन ही नहीं सकते। तो आपने तो इस आयत को ही झुटला दिया, आपने तो इसका इनकार कर दिया जिस दिन आपने ये कह दिया ना हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमें कभी कुछ मिला ही नहीं। तो कितनी बड़ा कलमा नाशुक्री का हम बोलते हैं जब हम ये कहते हैं। वलकद अरसलना इला समुदा खाम सालह, और अलबत्ता तहकीक हमने भेजा समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को, अन अबुदुल्लाह के अल्लाह की इबादत करो, सबसे पहली बात यही पैगंबर कहा करते थे। और आपको पता है कि सालेह अलैहिस्सलाम समूद की तरफ आए थे, फ़ैज़ा हम फरीक़ानी यख्तसिमून, तो वो हो गए दो फरीक बाहम झगड़ने वाले। दो फरीक कैसे हो गए, जब भी तौहीद की बात कौमों को बताई गई ऑलवेज ऐसा हुआ कि दो ग्रोह हो जाते थे, एक वो जो मान जाते थे और वो बहुत कलील होते थे, और दूसरा ग्रोह वो जो मुखालिफीन का होता था। तो फरीकान से मतलब ये नहीं है कि दो इक्वल ग्रोह, एक तो जो मुखालिफ होते थे वो इतने ज़्यादा होते थे, 99% अक्सर वही होते थे, और 1% कहीं ईमान लाने वाले होते थे, तो उनकी आपस में टसल शुरू हो जाती थी। अब वो ज़्यादातर ईमान वाले तो कमज़ोर लोग होते थे, अब ये जो बड़े बड़े सरदार होते थे इनको तो पता नहीं अपनी सरदारी ख़तरे में पड़ जाती थी, कभी मान के ही नहीं देते थे, लिहाजा ये ज़ुल्म व सितम शुरू कर देते थे उनके ऊपर। तो ऑलवेज ऐसा नहीं रहा कि जो दुनिया में जब पैगम्बरों ने बात की हो तो सुन के बस सारे ही मान गए, ये नहीं हुआ। ये कोई मेरे आपके साथ ही नहीं होता, ये पैगंबरों के साथ भी हुआ है कि अक्सरियत नहीं मानती थी। आज हम जो रोने शुरू हो जाते ना, लोग मानते ही नहीं, लोग मानते ही नहीं, तो पैगंबरों तक ही लोगों ने नहीं मानी थी। तो अब قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه, तो वो कहने लगे है मेरी कौम, यानी कौन कहने लगे, सालेह अलैहिस्सलाम, वो कहने लगे तुम बुराई की जल्दी क्यों करते हो भलाई से पहले। बुराई क्या, यानी अजाब की, अजाब की जल्दी क्यों करते हो, कबल हसना, हसना मतलब भलाई, यानी खैर भलाई ईमान अल्लाह की रहमत ये सब हसना है। तुम बजाय इसके कि अल्लाह की रहमत मांगो तुम अजाब मांग रहे हो। और आप देखें ये जब इनके सामने पैगाम आता था तो एक तो तबका जो दीन का मुखालिफ था, दूसरा दीन पे चलने वाला था, टसल शुरू हो जाती थी। सालेह अलैहिस्सलाम उनको बता रहे हैं दीन की बात बता रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि अगर आप नहीं माने तो अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाएगा। याद रखिए पैगंबर बशीर भी होता है और नज़ीर भी होता है, खुशखबरी देने वाला भी और डराने वाला भी, लेकिन वो कभी अपनी बात को खुशखबरियों से शुरू नहीं करता, डराने से शुरू करता है कि देखो लोगों अगर नहीं माने, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि तुम्हारे पीछे एक लश्कर है, अगर मैं कहूँ कि ये अभी हमला करने वाला है तो तुम मानोगे, तो वो नज़ीर से शुरू करता है, देखो लोगों अगर तुम नहीं माने तो अजाब है आगे, जहन्नुम में आगे, तुम कैसे उसका उसको सहोगे, इस तरह की बातें करता है। लोगों लोग अस्तगफार कर लो अल्लाह से, लोगों तोबा कर लो, लोगों अल्लाह की से उसकी रहमत मांगो, लोगों अजाब से बच जाओ, खुद को बचा लो, समझ आई, ऐसी बात करता है। वो आते नहीं, ये कहता लोगों जन्नतों के ऊपर चल पड़ो, तुम्हारे लिए तो जन्नत ही है। बहुत सारे लोग आज भी इतने बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन जब उनको कोई दाई दीन बताता है कि देखो लोगों ऐसे नहीं, क़यामत ऐसे है, ये है, आगे ऐसे अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, देखो लोगों गुनाहों में को छोड़ दो, इनका अंजाम इतना बुरा है, वो कहते हैं लो जी ये तो हर वक्त डराते ही रहते हैं। हालांकि आपको पता है डरावा जो है ना वो इंसान के लिए ज़्यादा बड़ा फैक्टर है उसको मोबिलाइज करने का, खुशखबरी इतना बड़ा, खुशखबरी भी अपनी जगह काम करती है लेकिन डरावा ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मसलन है आपको मैं कहूँ कि जी वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, बड़ी दूसरे स्टोर में बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, इससे चीपर प्राइस में मिल रही हैं और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, तो आप कहेंगे कब कोई चला जाएगा, कोई कहेगा नहीं भाई मेरे से नहीं इतना टाइम दिया जाता, चलो यहाँ पे भी सही है, गुजारा तो चल ही रहा है, चलो ये ले लेती हूँ, चार पैसे दे के ज़्यादा ले लूँ लेकिन मेरा टाइम बच जाएगा, ये वो इस तरह करके वो इसको बात को नहीं सुन रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये कहती हूँ कि लोगों इस स्टोर के अंदर आप जिसमें हैं थोड़ी देर में इसकी छत गिरने वाली है या इसके अंदर कोई बम पड़ा हुआ है, तो कितनी तेज़ी से लोग वहाँ से भागेंगे? क्या आप कोई कहेंगे चलो कोई बात नहीं ये भी सही है, कोई यहाँ पे भी बाहर भी जाके क्या पता, मैं कोई बात नहीं ठीक ही हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं, फिर तो ऐसी भगदड़ मचेगी कि लोग एक दूसरे को रोनते हुए बाहर निकल जाएंगे। अब पता कहीं बम की पता चल जाए तो लोग कैसे भागते हैं? तो आप देखेंगे इंतज़ार जो होता है ना वो ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। इसीलिए पैगंबरों ने पहले इंतज़ार किया लेकिन लोगों ने इंतज़ार को एक मजाक बना लिया, और ये नहीं था कि वो चाहते थे कि उनके ऊपर अजाब आए, ये था कि वो मजाक बनाते थे कि अच्छा जिस अजाब की तुम बात करते हो रोज़ रोज़ ये बातें करते हो ले ही आओ ना, ले आओ। फिर तो उनको कहा गया इसकी जल्दी क्यों मचाते हो, अल्लाह की रहमत से पहले तुम अजाब मांग रहे हो, लौला तस्तगफिरून अल्लाह अल्लाह कुम तुरहमून, तुम अल्लाह तआला से इस्तगफार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? इसका मतलब है इस्तिग़फ़ार वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला की तरफ से रहम आता है। अब वो पता है कुरान पाक में ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला इन लोगों पर अजाब नहीं करेगा ऐ नबी जब तक आप इस इनमें हैं, और साथ ही फरमाया और अल्लाह ताला इनके ऊपर अजाब नहीं भेजेगा जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। जो कौम इस्तिग़फ़ार करती रहे अल्लाह ताला उससे अजाब को टाले रखते हैं। अब एक हमारे पास रुकावट क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक रुकावट क्या है इस्तिग़फ़ार। ये दो रुकावटें हैं जो अजाब के आगे हायल होती हैं जिससे अजाब रुक जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम तो दुनिया से चले गए, एक रुकावट तो ख़त्म हो गई, अब क्या है सिर्फ इस्तिग़फ़ार। जब तक आप इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे आप बचे रहेंगे। जो कौम इस्तिग़फ़ार करती रहे लेकिन इसको कोई कुछ समझता ही नहीं, बल्कि लोग हंसते हैं कि लो जी ये मौलवियों का एक ही काम है इस्तग़फ़ार कर लो जी, तौबा कर लो तौबा कर लो। तौबा क्या है, अपनी गुनाहों से बख्शिश मांग लो, अल्लाह ताला से मांग कहो ये कि बात कि अल्लाह ताला मैंने गलत किया है, मैं शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मैं पछता रही हूँ मैंने क्यों किया, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। और ख़ुद को सही करने की कोशिश तो करो, को गुनाह छूटता नहीं भी है तब भी कोशिश तो करो। अब हम पहले ही कह देते हमने कौन सा छोड़ना, हमसे तो ये गुनाह छूटता ही नहीं, तो अब इस्तग़फ़ार का भी क्या फ़ायदा? नहीं, आप कोशिश तो करें, आप सच्चे दिल से अल्लाह के आगे रोएं तो सही, कहें तो सही अल्लाह ताला मैं बड़ी कमज़ोर हूँ अल्लाह, चाहे वो गुनाह नहीं छूट रहा ना, कहें अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होता छोड़ा जाता, तू मुझसे छुड़ा ले। कोई शर्मिंदगी तो शो करें, या ये अकड़ के बैठे रहें हमसे तो छूटता ही नहीं तो इसलिए छोड़ो, तौबा भी क्या करनी। नहीं, ये नहीं, लौला तस्तगफिरून अल्लाह, क्यों नहीं तुम बख्शिश मांगते अल्लाह ताला से? तुम्हें तो बख्शिश मांगनी चाहिए, अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए, तुम अजाब मांगते। तो रहमत किसके साथ रिलेटेड है, किसके साथ जुड़ी हुई है? हम चाहते ना हमारे पर अल्लाह ताला की रहमतें हों, रहम कर दे अल्लाह हम पे, तो इस्तिग़फ़ार शुरू कर दें। आप किसी भी पोजीशन में, हम सबको हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ से रहम ही चाहिए। तो रहम सिर्फ कहना अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर दे, इस्तिग़फ़ार करें इस्तिग़फ़ार करें, रहम खुद ही आ जाएगा अल्लाह का। ठीक है, तो उनको भी पैगंबर ने देखें ये नुस्खा बताया रहम का। अल्लाह अकबर, यानी शिर्क से आप तौबा कर लो तो अल्लाह की तरफ से रहम आएगा। कालू, उन्होंने कहा, कालू तैयर ना भी का व भी मम्मा का, उन्होंने कहा हम तो तुझे मनहूस समझते हैं और तेरे साथियों को, जो तेरे साथ ईमान वाले हैं तो मनहूस हैं। यानी किस बात से मनहूस समझते थे, कि जब भी उनके वो मुसीबत आती थी तो कहते थे आप ही मनहूस है, जैसे कौम मूसा फिरौन की कौम, कौम मूसा तो नहीं, फिरौन की कौम जो थी इसके ऊपर जब टिड्डियों का खून का मेंढकों का इसका अजाब आता था तो वो कहते थे कि ये जो हमारे ऊपर अजाब मुसीबतें आ रही हैं ना ए मूसा तेरी वजह से आ रही हैं, तू ही मनहूस है और तेरे साथ वाले, नऊज़ु बिल्ला। तो उनको कहा गया कि ये तुम्हारे अपने आमाल हैं जिस जो जो मनहूस हैं जिनकी वजह से तुम्हारे ऊपर आ रहा है, तुम कह रहे हो अल्लाह ताला की तरफ से या तुम कह रहे हो ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से। तो अब देखें वो तैर को क्यों कहते थे, परिंदे को क्यों कहते थे, इसलिए कि परिंदों को वो उड़ाते थे वो पहले ज़माने के अंदर ना इनसे फाल निकालते थे। अगर परिंदा राइट तरफ चला जाता था उड़ के, उसने कहीं तो जाना होता था, राइट तरफ चला जाता तो ये काम कर लो, लेफ्ट चला जाता तो नहीं करो ये काम। आज भी हमारे अंदर ये है ना, उसी से बदशगुनी फिर लेते थे। आज भी हमारे पास ये परिंदों से भी लिया जाता है, और फिर इससे क्या उल्लू बोल गया, काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये नहुसत हो गई, ये फलाना चीज़ हो गई, या फिर आज तो जो ज़्यादा दीनी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जी कुरान से ही हम फाल निकाल लेते हैं। अच्छा कुरान में ये वाली आयत आ गई, किसी ने कहा जी मैं पता नहीं किसने उनको कह दिया, अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ से ये लेकर आते हैं, समझ नहीं आती। और बिदत क्या होती है, और फिर ये बिदत भी है और आगे यानी एक नया ही तरीका निकाल दिया। कहते सातवीं लाइन पे जाके फिर देखें जो आयत आ गई, अगर जन्नत की आ गई है तो अच्छा काम है, जहन्नुम की आ गई तो ना करो। ये क्या तरीके कुरान को इसके लिए फालों के लिए फाल के, तो ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये शगुन लेना है ये शिर्क है, ये शिर्क है, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क फरमाया कि ये जो यानी बदशगुनी लेना, कि ये समझना कि इसके अंदर ये बुराई है, इसका मैंने इसका फलाने का मुंह देख लिया आज सुबह सुबह तो ये मनहूस है। हाँ अच्छा शगुन ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बदशगुनी लेना ना ये शिर्क है। यानी आपने ये समझ लिया कि काले बिल्ली के अंदर भी कोई काबिलियत है कि ये कोई काम ख़राब कर सकती है। ट्यूसडे का दिन, ट्यूसडे के दिन काम करना ऐसा है और इस दिन काम करना सही है। देखें ये सारी बदशगुनियाँ लेना शिर्क की बात है, और ऐसे फाले निकालना ये बिदत है। ये इसके अंदर इंसान क्या कि दीन को किस चीज़ के लिए, कुरान को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो उन्होंने क्या फरमाया सालेह अलैहि सलाम ने, कौला तौयरुकुम इंदल्लाह, तुम्हारी जो शगुनी है, शगुन है तो अल्लाह के पास है, यानी ये तो अल्लाह की तरफ से जो तुमने करतूत किए उसकी वजह से, ये अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ये जो मुसीबतें आ रही हैं अल्लाह की तरफ से आ रही हैं तुम्हारे अपने कामों की वजह से, और तुम कह रहे हो हम मनहूस हैं। जी आप सब जब से आए, आप देखें आप सरसरम पे भी यही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब से आप आए हैं उस वक़्त से ही हमारे घर में ये ज़ाहिर है एक ईमान ले आता था, दूसरा काफिर होता था, झगड़े फसाद, कोई टॉर्चर हो रहा है कोई। उन्होंने कहा आपने तो हमारी सोसाइटी ख़राब कर दी है, तो ये तो आप लोगों की यानी उनको बदशगुनी का ताना देते थे। तो किसी काम की वजह से बदशगुनी का सोच के उस काम से बाज आ जाना कि हमने नहीं करना ये काम क्योंकि ये इसमें बदशगुनी है, तो इसका मतलब है कि शिर्क कर लिया। हाँ दिल में ऐसे ख्यालात ज़रूर आ सकते हैं, बाज़ दफ़ा इंसान के दिल में ऐसी बातें आ जाती हैं बदशगुनी की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदशगुनी लेना शिर्क है, लेकिन साथ ही फरमाया वमा मिन्ना इल्ला, हम में से हर एक को कभी ना कभी ये वहम ज़रूर हो जाता है कि पता नहीं ये किया था तो शायद इसलिए से तो नहीं हो गया, इस घर में गए जब से इस घर के अंदर आए हैं तो हमारे ऊपर मुश्किलें आ रही हैं, पता नहीं जब से हमने ये दरख्त काट लिया उस वक़्त से हमारे घर में बीमारी होंगे, तो कुछ इस तरह की बात जहन में आ जाती है। तो वो वहम आ जाना एक बात होती है, शैतान डाल सकता है, लेकिन उसका इलाज फिर क्या है, अल्लाह पे तवक्कुल करना। फिर ये नहीं कि आप उस बदशगुनी के ऊपर ही चल पड़ो, ऐसा वहम आ जाए अल्लाह पे भरोसा करेंगे, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, ना काली बिल्ली के, ना उल्लू के, ना इस घर के, ना इस बंदे के जिसका मैंने मुंह सुबह को देखा, ना किसी चीज़ में नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल होगा ना तो ये वहम खुद ही निकल जाएगा। और कैसे पता चलता है अल्लाह पे तवक्कुल है या नहीं, कि अल्लाह ताला का ख्याल सबसे पहले है, उसके ऊपर भरोसा हो। अब पता है एक चेक करने का, एक चेक करने का तो नहीं लेकिन एक तरीका आपको बताऊँ, जब इंसान ने देखना हो ना अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, तो देखे कि क्या हर एक भूल जाता है और सिर्फ अल्लाह ही याद रहता है सबसे पहले। आप देखना, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जब हम लोग इन मुल्कों में नए नए आते हैं ना, ज़ाहिर है हम लोग सारे इमिग्रेंट्स होते हैं, तो जब हम नए नए आते हैं इन मुल्कों में तो हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं होता, अक्सरियत का हम में से, ठीक है, कोई भी नहीं होता। तो अब हमारे प्यारे, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले दोस्त अहबाब सारे हमारे मुल्कों में रह गए, तो अब जब यहाँ पे आके कोई भी मुश्किल आती है ना, तो ज़ाहिर है हमारा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो हम कहते हैं अरे अल्लाह तूने ही करना है, बस हमारा तो कोई भी नहीं है, ये है तवक्कुल। तो जब ऐसा कभी मामलात हो ना तो फिर खुश हो जाया करें कि ये अब मेरे अंदर तवक्कुल आ गया, ये बहुत अच्छी तरह तवक्कुल सिखा देता है। लेकिन जब हम अपनी कंफर्ट जोन में होते हैं ना, हमारे प्यारे भी हैं, हमारे दोस्त बाद हमें 10 लोग जानते भी हैं, तो हम बड़े आराम से तवक्कल भूल ही जाते हैं और बस हमें हर काम में वो याद आता है और वो याद आता है और वो याद आता है, कहीं दोस्त कहीं रिश्तेदार। तो तवक्कल है भरोसा अल्लाह पे। तो आपसे सर ने फरमाया कहीं इंसान को कभी ना कभी वहम आ जाता ना, तवक्कुल करें, उस वक्त ही तवक्कुल आ जाना चाहिए कि बस अल्लाह नहीं करना और अल्लाह के ही हाथ में है, और मुझे क्या यह कि मैं इन चीज़ों के ऊपर ऐसे भरोसा शुरू कर दूं और ये सोचूं कि ये चीज़ें मेरे कोई काम बिगाड़ सकती हैं। तो बल अंतुम कौमुन तुफ्तानून, बल्कि तुम तो वो कौम हो जो आजमाए जा रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम ये नहीं देखते, तुम इसको नहूसत करार देते, ये तो इम्तिहान है, अल्लाह की आजमाइश है, तुम में से कौन है जो कि फिर ईमान लाता है, कौन है जो तौबा करता है, कौन है जो अल्लाह की तरफ आ जाता है इस जो मुसीबतें आ रही हैं उसके बाद। देखिए मुसीबतें भी जो आती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ दफ़ा आजमाइश ही होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान तौबा कर ले, वापस अल्लाह की तरफ पलट आए और इंसान अल्लाह वाला हो जाए, अल्लाह ताला के करीब हो जाए। और वाकई बाज़ आजमाइशें इंसान को अल्लाह से करीब भी कर देती हैं, उसको होश में ले आती हैं। जैसे एक होती ना कि एक ज़ोर से बेल हो गई, एक ज़ोर से अलार्म बजा, तो ये अलार्म्स होते हैं हमारे लिए कि वेक अप, सोए हुए ना जाग जाओ। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, एक और हदीस में अच्छा ये आता है, शगुन लेने के लिए जानवर उड़ाना, फाल निकालने के लिए कुछ डालना और बदशगुनी कुफर में से है, ये भी हदीस है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे इतने ये फाल निकालने के चक्कर हो गए हैं कि आजकल तो पता नहीं किन किन चीज़ों से कभी कोई कछुआ बताएगा कि मैच जीता जाएगा या नहीं, पता नहीं कभी वो कुछ ऐसे चीज़ें कोई कार्ड्स के ज़रिए कुछ करते हैं, कभी वो तोता है वो जो एक लेटर निकाल उठाएगा और फिर वो बताएगा कि मैं मुझे ये काम करना है या नहीं, शादी पे जाना है या शादी यहाँ पे करूँ या नहीं, कारोबार करूँ या नहीं, इस दिन सफ़र करूँ या नहीं, ये इस कारोबार में हाथ डालूँ या नहीं, वीज़ा लगेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम फालों के जाके तो उनसे पूछते हैं। और आजकल तो इस कारोबार का इतना ही चर्चा हो गया कि टीवी पे बैठ के भी वो फाले निकाल रहे होते हैं, खासतौर पर आप ये मैच वगैरह का देखें, तो ये सारी शिरकिया बातें हैं और हम आराम से देखते भी हैं और उन पर बिलीव भी कर लेते हैं और बाद में कहते हैं देखा उसने कहा था ना। अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा फिर वकाना फिल मदीना थी, अब उनका हाल क्या था, ये वाली बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये फ़र्स्ट टाइम ही आ रही है, हमें पता चल रही है समूद की कौम की एक और चीज़ कि उनके शहर में क्या था, तिसअतु रहतिन, 9 राहत थे, जत्ते थे। मैंने आपको जैसे बताया राहत से वैसे मुराद फ़र्द भी हो सकता है और राहत से, लेकिन उमूमी तौर पे मुराद जमात होती है, अफराद होते हैं और ख़ास कर फसादी किस्म के और 10 से कम जो होते हैं और जिनको कहते हैं बदमाश वो, और इनमें कोई औरत नहीं होती, सारे मर्द होते हैं। तो ये 9 असल में अफराद नहीं थे बल्कि 9 जो थे ना राहत थे, जत्थे थे, गैंग्स थे, गैंग्स के ग्रुप्स थे। आपसे सोचे युफ्सिदूना फिल अर्दी वला युस्लिहून, और वो फसाद करते थे ज़मीन में और वो इसलाह नहीं करते थे। अब देखें यहाँ पे एक बात हमें समझ आती कि उनके अंदर कुछ भी इसलाह के काम नहीं थी, इसलिए कि बदमाशों में भी कई ऐसे होते हैं कि जो गरीबों की मदद कर देते हैं, कहीं सदका कर देते हैं, कोई अच्छे अच्छे भी चैरिटी के काम कर देते हैं, लेकिन इनमें तो कोई भी नहीं इसलाह थी। फ़क़ालू तक़ासमु बिल्लाह, उन्होंने कहा आपस में वो मिले और वो जो 9 जत्थे थे या उनके 9 के सरदार थे, कसम खाओ अल्लाह की, किस बात के ऊपर, कोई अच्छी बात पे नहीं, लिनुबय्यि तन्नहु, कि हम ज़रूर रात को हमला करेंगे उस पर। इससे 2 बातें पता चली, एक तो ये कि वो अल्लाह ताला को जानते थे इसीलिए उसके नाम की कसम खा रहे हैं, दूसरे वो सब मिल के एक चीज़ का फ़ैसला कर रहे हैं, और सब मिल के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक करता है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम जाता है, जब सारे मिल के करते हैं तो फिर तो सब के ऊपर ही, फिर एक तो राज में रखेंगे इस चीज़ को और फिर सारे ही इस जुर्म में शामिल होंगे, तो फिर सज़ा किसको मिलेगी, क्योंकि यही चीज़ कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आने वाली थी कि दारुन नदवा में काफ़रों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला करके और कत्ल करने की साजिश कर रहे थे, वही चीज़ आपको बताई जा रही कि उन्होंने भी ऐसा, क्योंकि मक्की सूरत है तो उन्होंने भी ऐसा किया कि रात को हमला करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग कर रहे हैं और सारे मिलके हम हाँ कत्ल करेंगे, हम हमला करेंगे उसके ऊपर और वह आला और उसके घर वालों पर, सुम्मा लना कूलन्ना ली वली माँ शहीदना, फिर हम कहेंगे उसके वारसों से तो कि हम तो हाजिर ही नहीं थे, हमें नहीं पता, महलिक अहली ही, तो हलाकत का वक्त उसके ख़ानदान की, वह इन्ना ला सादिकून, और हम तो बिल्कुल सच्चे हैं, हम फिर उसके बाद मुकर जाएंगे, साफ ही इनकार कर देंगे और हम कहेंगे हमें तो पता ही नहीं कहाँ पे वो उनके ऊपर हमला हुआ, कैसे वो कत्ल किए गए। ये कब की बात है? ये उस वक्त की बात बताई जा रही है जब सौले अलैहिस्सलाम ने उनकी ऊँटनी की कोंचे काट दी गई थी और उन्होंने फरमाया था कि 3 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, 3 दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा। तो उस वक़्त इन्होंने कहा ये तो हमारे पास क्या अजाब लेकर आएंगे, हम इनको ही रास्ते से हटा देते हैं, इनका ही पत्ता साफ कर देते हैं। तो उन्होंने फिर ये किया कि प्लानिंग करने बैठ गए, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन जब कोई अल्लाह वालों के ख़िलाफ़ प्लानिंग करता है ना, तो वो ये भूल जाता है कि ये प्लानिंग मैं इंसान के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा, मेरे सामने इसका रब होगा मुकाबले पर, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे की फिर हिफाजत करता है जो उसके मिशन पे चला होता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत खुद फरमाता है। वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे, वह मकरू मकरन, वो उन्होंने अपनी प्लॉटिंग की, प्लानिंग की, और अल्लाह का अल्लाह के नाम की कसम खा के, इसलिए ये ना सोच लिया करें कि अल्लाह के नाम की अगर कोई कसम खा ले तो वो ज़रूर सच्चा ही होगा या उसका काम अच्छा ही होगा, नहीं, उसका काम बहुत ख़राब भी हो सकता। ऐसे शरपसंद लोग भी अल्लाह के नाम की कसमें खा खा के और लोगों को पागल बना सकते हैं। तो उन्होंने एक चाल चली, वह मकर ना मकरन, लेकिन दूसरी तरफ कौन है चाल चलने वाला, दूसरी तरफ कौन है तदबीर करने वाला, अल्लाह ताला है। अल्लाह ने भी ये तदबीर चली, वह हम ला यशुरून, उनको तो इसका शऊर भी नहीं था कि कौन उनकी बात सुन रहा है, सौले अलैहिस्सलाम ने तो नहीं सुनी, लेकिन अल्लाह ताला ने सुन ली ना। मकर का लफ्ज़ मैंने आपको बताया तदबीर के लिए होता है और तदबीर अच्छी बुरी दोनों हो सकती, तो अल्लाह ताला के लिए भी वही लफ्ज़ आया। हमारे उर्दू में मकर का लफ्ज़ बुरे मानों में होता है लेकिन यहाँ पर खुफिया तदबीर के लिए। तो उन्होंने चाल चली और अल्लाह ताला ने उनके मुकाबले में तदबीर चली। तो देखो उनको पता भी नहीं था उनके साथ क्या होने क्या वाला है, वो नहीं जानते हैं, तो अपनी तरह से प्लानिंग करके हम तो ऐसा काम करेंगे कि किसी को पता ही ना चले और मुकर भी जाएंगे सारे, और फिर किसको कौन बदला लेता फिरेगा और उसके बारे से कहेंगे भी, जाहिर है इसका मतलब है कि सौले अलैहिस्सलाम उस कौम में से थे, उनके और रिश्तेदार तो होंगे ना। अब ये अहले मक्का को भी ज़रा आईना दिखाया गया, उनके सामने तो जब ये आयतें पढ़ी जाएंगी वो भी ये काम करने वाले हैं, तो देख लो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया। फंजुर कई फकाना आकिबतु मकरीम, तो अल्लाह ताला ने उनकी चाल का क्या अंजाम किया, फिर देखो क्या किया, अन्ना दमरना हूँ व कौम हूँ अजमाइन, हमने तबाह बर्बाद कर दिया ना। दमरना मतलब होता है कीमा बना के रख दिया, चिकना चूर कर दिया उनको, तबाह कर दिया और उनकी कौम को, सब के सब को। तो क्या हुआ था इनके साथ कि इनके ऊपर जलजला भी आया था और इनके ऊपर एक चीख की भी आवाज़ थी, और फिर उसके बाद आज भी आप देखें कि इनके घर वहाँ पे इनके जो उन्होंने कार्विंग की हुई थी, बहुत तरक्की याफ्ता ऐसी कौम थी, आज तक नहीं लोग ऐसी चीज़ें बना सके जैसे इनके घर हैं। तो सोचें कि वो भी कोई छोटे लोग थे, मामूली लोग नहीं थे। फतिल का भी तुम खाविया, उनके घर हैं खाली पड़े, बे आबाद घर, वीरान घर, कभी वहाँ पे कोई बसा ही नहीं, हज़ारों साल गुजर गए, कोई तो जाके उन पे कब्ज़ा कर लेता, आजकल तो कोई जगह कोई छोड़ता ही नहीं है, क्यों नहीं कब्ज़ा किया। ऐसी नहूसत और ऐसी चीज़ उस जगह पर आ गई जहाँ पे इन कौमों पर अजाब आया। तो तुम देख लो, इनसे सीखो कि अल्लाह ताला फिर जब बदला लेता है और वो प्लानिंग करता है ना, तो फिर कैसी होती है उसकी प्लानिंग। आज उनकी इमारतें खड़ी हैं, उनके बनाने वाले, उनके प्लानिंग करने वाले, उनको संवारने वाले, उनको सजाने वाले, उनको आबाद करने वाले कहाँ हैं। तो किस वजह से उनके साथ ये हुआ, इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि उनका एक बंदा भी नहीं बचा, बीमार तलम, इस वजह से कि उन्होंने जुल्म किया। अल्लाह अकबर। और हमें कहीं पूछ लिया जाए कि ये तबाही क्यों आई है या जलजला क्यों आया, तो कहते नहीं नहीं वो तो कोई ये हो गया और वैसे हो गया और पता नहीं क्या क्या तावीलें देते रहते हैं। अल्लाह ताला का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। ये वजूहात होती हैं किसी कौम के ऊपर अजाब आने की, जबकि उनको नसीहत की जाए और वो ना माने। और वो उसी के खिलाफ खड़े हो जाए। इन्ना फी ज़ालिका लआयत लिक़ौमिन यालमून, इसमें निशानियाँ उन लोगों के लिए जो इल्म रखने वाले, और जो इल्म ना रखें, जो जाहिल है उसके लिए कोई निशानी नहीं। जो इस पास इल्म ही नहीं है ना, वो बस फिर यही कहता जाता है नेचुरल डिसास्टर है, ऐसा तो होता ही है, गर्दिश ज़माना है, ये तो लोगों के साथ चलता ही है, ये कौन सी कोई नई बात है, पहले भी तो जलजले आते ही थे, है ना, ऐसे ही कह देते हैं। अल्लाहु अकबर। व अंजैना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और निजात दी हमने किन को, ईमान वालों को और जो तकवा इख्तियार करने वाले, इन जो अल्लाह के अजाबों से डरते हैं, बचते हैं। तकवा क्या होता है? बचना। किस चीज़ से बचना? गुनाहों से बचना, अल्लाह की नाराज़गी का सोच के गुनाहों से बचना कि अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, मैं नहीं ये गुनाह कर सकती। अल्लाह के अजाबों से बचने की फ़िक्र करना कि अल्लाह ताला का अजाब बहुत बड़ा है, मैं उसे बचने की फ़िक्र करती हूँ, तो ये तकवा होता है। तो इसका मतलब है, अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, तो उसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक ईमान और एक तकवा। तो अल्लाह ताला ने उनको निजात दे दी थी, यही चीज़ बचाती है। वलूतन इस कौल अल कौमी अतातून फ़ाहिशा तो अंतुम तब तो बसरून, और लूत जब उसने कहा अपनी कौम से, क्या तुम फहाशी करते हो, बेहयाई के काम करते हो जब तुम देखते भी हो, क्या नहीं किया। अच्छा, एक बात डिफरेंट एक समझें कि कहा जाता है, बाज़ तफसीरों में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम की जब बात की जाती है तो उसमें ये नहीं कहा गया कि तुम अल्लाह की इबादत करो और ये करो, क्योंकि बाज़ मुफसरीन ने लिखा है कि हो सकता है लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो शिर्क ना करती हो, लेकिन उनके अंदर बार बार देखें, आप देखेंगे भी सूरह आराफ़ में भी, यहाँ पर भी, लूत अलैहिस्सलाम जब भी उनको मैसेज दे रहे हैं ना, दूसरे अंबिया मैसेज दे रहे हैं तो अल्लाह की इबादत करो इस तरह, लूत अलैहिस्सलाम जब भी मैसेज दे रहे हैं तो फौरन कह रहे हैं, सबसे पहले क्या बात कह रहे हैं कि तुम क्यों फहाशी कर रहे हो, तुम फहाशी से बाज आओ, क्या तुम फहाशी कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो, या हो सकता है उनमें शिर्क भी हो और ये फहाशी उनकी इतनी ज़्यादा हो कि शिर्क का इतना बड़ा फसाद ना हो, जितनी फहाशी बदकिरदारी उनकी, गंदा काम जितना ज़्यादा बड़ा फसाद पैदा कर रहा है, इसलिए एक ये भी वजह है। दूसरी वजह से ये हो सकती है कि हो सकता है वो शिर्क नहीं करते थे लेकिन इस गंदे काम के अंदर थे, समझ आई बात ये। अब लूत अलैहिस्सलाम का भी मामला देख लो कि वो कहते हैं तुम फहाशी की तरफ आते हो, बेहयाई की तरफ, यानी इस गंदे काम की तरफ आते हो, अंतुम तुबसिरून, और इसके दो माने हैं। अगर इसको बसारत से ले कि तुम देखते भी हो, यानी इस अस्तग़फिरुल्लाह कि यानी ये लोग खुल्लम खुल्ला ये काम करते थे, रास्तों में बेहयाई के काम करते थे, इनकी मजलिसें होती थी उनमें खुल्लम खुल्ला करते थे, इनको ये काम कोई बुरा नहीं था, समझते थे इसको। आज भी आप देखें ये काम कितना खुल्लम खुल्ला होने लगा है। मतलब ये जब ये तुबसिरून की ये बात पढ़ते ना, तो ये होता है कि या अल्लाह इस काम के अंदर लोग आज उस तरह से ही मुलव्वस हो गए जैसे लूत अलैहिस्सलाम के वक्त में थे, कि यानी ये LGBT का ये आप देखें इतना कॉमन हो गया कि जब हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त हमें तो इन बातों का पता भी नहीं होता था कि ये भी कोई चीज़ होती है, यानी कॉलेज की हद तक आके भी नहीं पता था कि ये कोई काम होता है ऐसा, लेकिन आज छोटे बच्चों तक को पता है, स्कूलों के अंदर इस बातों को बताया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला इनकी परेड्स हो रही हैं और उसको उल्टा बुरा कह रहे हैं जो कि इस बात को बुरा समझे। तो ये देखें कि बेहयाई कितनी, ये फहाशी और ख़ास तौर पे ये अमल कितना खुल्लम खुल्ला होने लगा है और इसको समझा जाता है कि ये कोई बात ही नहीं है, एक नेचुरल बात है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला अंतुम तुबसिरून, और दूसरी इसके अंदर बसीरत की बात, अगर बसीरत से ये लिया जाए तो यानी तुम समझते हो, तुम्हें पता है कि ये काम नेचुरल नहीं है, ये काम सही नहीं है, फिर भी तुम ये करते हो, ये काम गैर फितरी है फिर भी तुम करते हो, जानते बूझते करते हो। तो इनके अंदर देखें एक बात, जो मैंने पहली बात बताई ना खुल्लम खुल्ला होने वाली, याद रखें एक गुनाह होता है ना, कोई छुप के करता है, कोई उसके अंदर कोई शर्म होती है कि ये गुनाह है, हाय इसको अल्लाह लेना नहीं करना, ये कोई गंदी बात है बुरी। एक होती है कि इंसान गुनाह भी करे, चोरी और सीना जोरी, इंसान गुनाह भी करता है और खुल्लम खुल्ला कि उसको कोई शर्म नहीं है, और वो कहता है जी हाँ जी मैं ये वो बंदा हूँ, मैं गे हूँ, मैं फलाना हूँ, ठीक है। इससे उसका मैग्नीट्यूड कई गुना बढ़ जाता है, इसके गुना की जो इंटेंसिटी है ना वो कई गुना बढ़ जाती है, जब कोई गुना भी खुल्लम खुल्ला होना शुरू हो जाता है, जब लोगों को हया ही नहीं रहती, शर्म ही नहीं रहती कि ये कोई गुना है। मसलन एक बंदा झूठ बोले और कहेगा हाँ जी हम झूठ बोलते हैं, एक बंदा करप्शन करे कहेगा हाँ जी हम करप्शन करते, कहीं तो हया होती है ना, कहते नहीं नहीं हम नहीं करते, झूठ बोलते जाते हैं कहते हम नहीं करते नहीं करते, इसका मतलब कहीं तो शर्म है अभी। लेकिन एक कहे कि ना जी करते हैं जी करते हैं जो मर्जी कर लो, तो फिर आप क्या कहेंगे उसको। तो ये लोग ऐसे काम करते थे और इतने खुलम खुला करते थे, और इनके अंदर ये हया भी ख़त्म हो गई थी, इनको ये इसको बुरा भी नहीं समझते थे, इसी वजह से तो पूरी की पूरी कौम इसमें थी। जब बुरा नहीं समझेंगे तो बुरी सभी फिर करने लगते हैं। बुराई की कराहत होना ज़रूरी है, वरना बुराई आम हो जाती है। अगर आप बुराई को बुराई नहीं समझते ना, मैं तो समझती हूँ एक चीज़ वो हम कहते होते थे ना पहले ज़माने में कि लोगों से ना डरो और लोगों से मत हया करो, ठीक है अल्लाह सा अल्लाह ताला से ही डरना चाहिए और लोगों से नहीं डरना चाहिए, लेकिन एक जो झिझक माशरे की रहनी चाहिए इंसान के अंदर, ये भी एक रहमत होती है। ये नहीं कहना हमें नहीं परवाह लोगों की, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाथों में हाथ डाल के जा रहे हैं और बेशर्मी के हरकतें कर रहे हैं और कहें हमें नहीं लोगों की फिक्र, हम कोई लोगों से डरते हैं, तो ये भी कोई सही चीज़ नहीं है। इसका मतलब है एक माशरे के अंदर बेहयाई इतनी आम हो गई है कि कोई झिझक ही नहीं रही। तो एक झिझक रहनी चाहिए, एक अदब रहना चाहिए, एक लोगों का वो रहना चाहिए कि देखे ये चीज़ दूसरों के सामने की जाए तो ये सही नहीं है, ये भी एक हया होती है और ये होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बेबाक हो जाना कि अब लोगों ने इसको बुरा समझ लिया ना, उन्होंने कहा नहीं हमें हम ये इसको लोगों को से हम डरते ही नहीं हैं, तो ठीक है अब बस लोगों का खौफ ही ख़त्म हो गया, अब हम बेहयाई को भी खुल्लम खुल्ला करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का खौफ तो पहले ही नहीं है, अब लोगों का भी जाता रहा। तो वो लोग ऐसे थे कि खुल्लम खुल्ला फहाशी करते थे, उनको ये भी नहीं था कि लोग देखेंगे तो क्या करेंगे या क्या कहेंगे, और इस वजह से बुराई फैलती गई और पूरी कौम इसकी लपेट में आई भी थी। तो जब आपसे कहा जाता है ना कि आप इस चीज़ को बुरा समझें, ज़ुबान से बोलें, हाथ से रोकने की कोशिश करें, नहीं तो दिल में तो बुरा समझें, तो ये भी मुआशरे में बुराइयों को रोकने का एक तरीका है। जिस दिन आपने ये भी बुरा समझना भी बंद कर दिया ना, तो फिर माशरे में सारी बुराइयां फैल जाएंगी। अपना ईमान तो गया ही गया, अपना तो ईमान है ही नहीं है इसका मतलब, अगर बुराई बुराई नहीं लगती। और आपको ये लगता है ना ये सारे नेचुरल हैं और ये कोई बात नहीं है, ये भी एक तरीका होता है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। देखें अपने से डिफरेंट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी एक्सेप्टेंस की बात है। इतने तंग नज़र ना हो जाए कि हम ही बस ठीक है और ये सारे गलत काम कर रहे हैं, इतने ना तंग नज़र हो तो आपका इसका मतलब ईमान है ही नहीं अंदर, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बुराई जिसको जिसके ऊपर एक कौम तबाह कर दी गई उसको आपने इतना लाइट ले लिया और आपके लिए ओके है वो, इस पे अल्लाह ताला का इतना गज़ब नाजिल हुआ। कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि हो सकता है, ये एक एक तफसीर ये भी है कि हो सकता है कि अंदर इनके अंदर शिर्क नहीं था, लेकिन ये बुराई थी जिस इनको अजाब तक पहुँचाया। अन्ना कुमला तात उन्नर रिजाला शहवत मंदून नसा, क्या तुम आते हो मर्दों के पास औरतों को छोड़ के शहवत के लिए, बल अन तुम कौम तजहलून, बल्कि तुम कौम हो तजहलून, जहालत बरतने वाली। जहालत का यहाँ पर क्या मतलब है, जहालत वाला काम सिर्फ वो नहीं होता कि आपको पता नहीं है तो उसको जहालत कहते हैं, बल्कि इंसान किसी गलाजत और गंदगी में मुबतला हो जाए तो वो भी जहालत कहलाती है। जैसे हम पढ़ चुके हैं ना पहले सूरह फुरकान में, इज़ा खातबकुम जाहिलून क़ालू सलामा, तो जब तुम जाहिलों के पास से गुजरो तो फिर उनको सलाम के भाई मैं तो नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व होता, तो उस वहाँ पर मतलब क्या कि मुँह से जो गंदी बातों में वो गंदगी करते हैं, तो वो यहाँ पर मतलब है यानी उनके अल्फाज भी गंदे होते थे, उनकी बातें भी गंदी होती थी, वो अपनी उनकी जो टॉपिक होता था ना उनकी मजलिसों में वो भी बेहयाई के टॉपिक्स होते थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अगर हम अपने ड्रामों के टॉपिक देख लें, अपने फ़िल्मों के टॉपिक देख लें, अगर हम इन चीज़ों के बारे में जो हम डिस्कशंस करते हैं अपनी मजलिसों में, वो हम अपनी मजलिसों के टॉपिक्स देख लें, तो वो अगर बेहयाई पे मबनी है तो हम भी तो जाहिल ही हैं फिर, चाहे कितनी भी डिग्रियां ले ली हैं, जाहिल हैं। ठीक है, हम जाहिल उनको सोचते हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं गया, हम जाहिल इनको कहते हैं जो बेचारे अनपढ़ होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो जाहिल वो है जो ऐसी बातें करें, ऐसी बुराई की बातों को बुराई ना समझे। ठीक है, तो ये बातें करना भी जहालत है, ऐसे मजाक करना भी जहालत है, गंदे मजाक, फहाशी की बात। फ़मा काना जवाब कौम ही इल्ला अनकालू अखरिजू आला लूतन मिन क़रियतिकुम, और उनका जवाब और कुछ नहीं था, उनका एक ही बात उन्होंने रट लगा ली थी, एक ही बात, निकालो इनको यहाँ से, इनको निकालो, इन आले लूत को। आले लूत कौन थे? यानी जो उनके पैरोकार, और वो सिर्फ उनकी बेटियाँ थीं, बस अपनी बस्ती से निकाल दो। क्यों, क्या इनका गुनाह था? इन्ना हम उना सुइया तो हारून, ये बड़े बनते हैं पाकबाज, जैसे आज भी एग्जैक्ट सेम चीज़ कही जाती है, जो कह रहा है कि ये गंदा काम है, ये बुरा काम है, ये नहीं करो। अच्छा, ये बड़े पाक साफ लोग हैं जी, आप हमें जो आके लेक्चर दे रहे हैं, वो जो इसको बुरा कहें वही बुरे बनते हैं, उन्हीं को बुरा कहा जाने लगता है, उन्हीं को आउटकास्ट करने की कोशिश की जा रही है, और उन्हीं को मजाक उड़ाया जा रहा है, और उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है बातों का, बजाय इसके कि खुद शर्मसार हो जाएं कि हम क्या बुरा कर रहे हैं, वो उनको बुरा कहने लगते हैं। ये आपने कैसे कह दिया? आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप इसको बुरा समझ रहे हैं, तो आप ही बुरे हैं, मुजरिम बना के रख दिया। आज सोसाइटी इस तरफ जा रही है कि अगर आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया ना, आप जॉब से आउट हैं, आप के ऊपर बास जगहों पे तो आपके ऊपर वो केस फाइल हो सकता है, आपने इनको बुरा कह दिया। यानी ये हद तक गिर रही हैं सोसाइटीज, इस हद तक, और जिस कदर तेज़ी से ये फितना आज के दौर में इतनी तेज़ी से आगे जा रहा है ना, इतना पहले कभी नहीं होता। आखिर इतने साल भी तो गुजरे हैं, देखे ना, अब लूत अलैहि सलाम के बाद कितना ज़माना गुजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना भी आया बाद के ज़माने में, लेकिन इस सेंचुरी के अंदर जितना ये एकदम से ऐसे, जैसे कि मतलब एक आग की तरह फैलता है ना, जंगल की आग की तरह, इस तरह ये फितना फैल रहा है, और बाकायदा इस पर कवानीन बन रहे हैं, और बाकायदा इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, और बेहयाई, एक बेहयाई दूसरी भी होती थी, जिना हो गया ये, लेकिन ये वाली बेहयाई आज इतनी आम हो रही है और इतनी खुल्लम खुल्ला हो रही है कि इसके हक में लोग निकल खड़े होते हैं सड़कों पे। तो वो कहने लगे, आप बड़े पाक सा, अच्छा आप वैसे भी दीन की तरफ कोई आने वाला हो ना, या किसी को कोई कह दे कि जी आप देखें इस तरह से ना करें, दीन में ये अलाउड नहीं, तो उसके ऊपर ही बरस पड़ते हैं, आप बड़े पाक हैं, आप बड़े दीन वाले, आप बड़े अल्लाह वाले अपने आप को समझते हैं, आप बड़ी नेक हैं जो आप हमें ये लेक्चर दे रहे हैं, फिर देखें आप, यानी उसी का मुंह बंद कराते हैं कि तुमने बात कैसे की, नसीहत की बात नहीं अच्छी लगती किसी को, बस हमें दखल ना दो, हम जो कर रहे हैं हमें गंद करने दो। तो उन्होंने भी हक की बात को दबाने के लिए ये कहा कि इन्हीं को निकाल दो यहाँ से, हमें कहते भी क्यों हैं ये, हालांकि कोई लूत अलैहिस्सलाम ने डंडा नहीं पकड़ा हुआ था इनको सीधा करने के लिए, लूत अलैहिस्सलाम इनको कोई मार पीट नहीं रहे थे, बस इनका कहना भी बर्दाश्त नहीं था, और आज भी यही हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा ऐसे लोगों से कि हमें कहा भी जाए कुछ। और सेम एज जितने भी लोग सरकशी में मुबतला और गंदे और गुनाहे कबीरा के काम करने वाले, वो डिटाई से कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें ना कोई कुछ कहे, और जिसने कहा फिर उसके लिए यही बातें, अनजैना हो आला हो इलमराता हो, तो हमने निजात दी उसको भी और उसके घर वालों को भी सिवाय उसकी बीवी के, और आपको पता है कि क्यों, क्योंकि वो उसकी सपोर्टर थी, हम पढ़ चुके हैं पहले, कदर ना हमें अलगाबरीन, वो कदर कर दिया हमने इसको पीछे रहने वालों में, वाम तर ना लही मतरा फसाया मतरुल मुनतरीन, तो हमने उनके ऊपर एक बारिश बरसाई, ऐसी बारिश जो इतनी बुरी बारिश थी, क्योंकि वो बारिश पानी की नहीं थी, पत्थरों की थी, डराए जाने वालों के लिए ये बारिश थी, इतनी बुरी बारिश। इसका मतलब डराए जाने वालों को इबरत लेनी चाहिए कि देखो कैसी पत्थरों की बारिश फिर बरसी है, आज भी वही रब है और आज काम वही हो रहे हैं और आज भी बिल्कुल सेम ट्रैक पे लोग चल रहे हैं। तो अब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि रहमतें बरसेंगी, बरकतें आएंगी जिस सोसाइटी में ये सब हो रहा हो, और चुप करा दिया जाए ऐसे लोगों को जो कहें कि नहीं ये गलत है। और इससे पता चला, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लूत अलैहिस्सलाम डरे नहीं थे इन लोगों से, जब वो कह रहे थे हम निकाल देंगे इनको, हम ऐसे कर देंगे, निकल जाओ और फला, वो नहीं डरे थे। एक सलीमुल फितरत इंसान को गंदगी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। हमेशा याद रखें, जब भी आप रोकेंगे तो कुछ ना कुछ तो दूसरा कहेगा ना, आपको हार तो नहीं पहनाएगा। तो लेकिन बाज लोग इसलिए कि दूसरा हमें कुछ कह ना दे, इस डर की वजह से कि इसकी नज़रों से हम गिर ना जाएं, तो वो कुछ कहते ही नहीं हैं, हालांकि कह सकते हैं। हम कहते हैं हमें हमें क्या, करते रहें जो मर्जी कर रहे हैं, नॉन ऑफ आर बिजनेस, तो हम हमें क्या। नहीं, जब हमें क्या कह देंगे ना आप, तो फिर जब अल्लाह ना करे अजाब आएगा तो सारे ही फिर बीच में लपेट में आ जाएंगे। इसलिए कभी हम ये नहीं कह के कहिए इनका प्राइवेट मामला है, हमें दखल देने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह अकबर। और ये ताना सुनने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे, तुम बड़ी पारसा बनती हो, बड़ी नेक बनती हो, कोई बात नहीं, अगर किसी ने कह दिया तो हमारे कोई इज्जत में कमी नहीं आ जाती, इसलिए कि पैगंबरों को भी ये कहा गया, कुछ नहीं हो जाता अगर हमें कोई कह दे ऐसे, इतना इस पे रोने की और दुखी होने की ज़रूरत नहीं, आए मुझे उसने ऐसे कह दी, अब तो मैंने कभी किसी को कहना ही नहीं, आगे से वो हमें ये सुना देते तो सुना ही देते ना, क्या हो गया। कम अज़ कम हम तो अल्लाह के यहाँ बरी ज़िम्मा हो जाएं कि अल्लाह ताला, हम तो कुछ और नहीं कर सकते, कह ही सकते थे ना, अल्लाह ताला हमने कहा था। लेकिन अब उसके बाद ऐसे लोग शादियाँ भी कर रहे हैं, उसके अंदर भी जाके खड़े हो जाना, ऐसे लोग किसी के घर के अंदर हैं और उनको भी एक्सेप्ट कर लेना कि नहीं बेटी ठीक है भाई, इनका अपना मामला है, क्या करें आजकल तो ये हो ही रहा है। नहीं, औरतों के सारे काम अच्छे ही कर रहे हैं ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया कि अगर हम ये मान जाएं ना कि इन लोगों में शिर्क नहीं था, तो ये बुराई इतनी काफ़ी थी कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी और उनके ऊपर उस तरह अजाब भेजा जैसे उन कौमों पे भेजा जो शिर्क करने वाली थी, इतनी बुरी चीज़ है ये। और फिर इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम करने वाले की सज़ा यही फरमाई कि उसको ऊंचाई से नीचे गिरा दिया जाए, गिरा के उसको मार दिया जाए, उसको यानी उसकी सज़ा कत्ल है, और कत्ल भी इस तरह से किया जाए। क्यों? इसलिए कि इनकी बस्ती को भी ऊपर उठा के ऊपर से नीचे फेंका गया था। एक और बात बहुत ज़रूरी मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, वो ये कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि अपने अंदर इस तरह के फीलिंग्स महसूस करते हैं। देखें, आप इस तरह के प्रॉब्लम्स की ईमेल्स आती हैं मेरे पास, आपको मैं यही कहूँगी कि जब आप दीन इस्लाम को एक्सेप्ट कर चुके, तो इस्लाम का मतलब ही क्या, सरेंडर करना, अल्लाह ताला के हुक्मों के आगे बिछ जाना, अपनी विल को छोड़ के अल्लाह की विल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। अगर ये करना ही नहीं है तो फिर किस चीज़ का इस्लाम है, किस चीज़ की इताअत है। फिर अगर ऐसा कोई जज्बात किसी के अंदर सर उठाते भी हैं तो उनको रोक लें, क्योंकि ये हराम है। अब देखिए, अल्लाह ताला ने शराब को हराम किया, कोई कहे जी मुझे दिल करता है, दिल करता है तो इसका मतलब शराब पीना शुरू जाए क्योंकि उसका दिल करता है, नहीं ये तो मेरे लिए नेचुरल ही है ना। अब एक आदमी के लिए नेचुरल है औरत की तरफ उसका मिलान होना, उसकी अट्रैक्शन होना, ठीक है। अब एक आदमी जिना शुरू कर दे, कहे कि मैं क्या करूँ, मेरे अंदर तो अट्रैक्शन है ही, औरत की अट्रैक्शन है मेरे अंदर, अल्लाह ने रखी है, मेरी तो फितरत में है, तो इसलिए मैं जिना करा, रेप कर ले किसी को क्योंकि मुझे ये अच्छी लगी तो उसको रेप कर लिया, मतलब बताएं ये जायज़ हो गया, उसकी उसकी तो वाकई फितरत में, इनकी तो फितरत में नहीं होता, नहीं होता इनकी फितरत में, शैतान है जो ये डालता है अंदर ख्यालात। और ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है वो डालती हैं दिमाग में, वो उनको इस तरफ करते हैं कि हाँ तुम्हारा इस तरफ मिलान है तो तुम ये भी जायज़ काम है, तुम ये कर लो। और वैसे कोई इसी इंसान को कोई अच्छा लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उससे सेक्सुअल फीलिंग आने शुरू हो जाए और सेक्सुअली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो अगर कोई कहता है मैं सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो वहीं अपने आप को रोक ले, जैसे वो मर्द रोकेगा रेप करने से पहले, जिना से पहले, उसी तरह इसको भी अपने आप को रोकना है कि नहीं ये हराम काम है, मुझे ये नहीं करना। और ये देखो इस कौम का क्या अंजाम हुआ। कल को कोई कहे जी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है शिर्क करना, इन बुतों के आगे झुकना, झुकने शुरू हो जाएगा क्या जाके? तो ये चीजें जो हराम की गई है वो हराम है, उसको हराम समझे, उसके बाद ये बहाने ना करें कि मुझे अट्रैक्शन हो रही थी लिहाजा फिर मैं क्या करती। नहीं, फिर इस चीज को रोकें अपने आप को। कुल अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए, सब तारीफ अल्लाह के लिए। आप किस पे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है? यहाँ पे तो कौम की तबाही की बात हुई। जो ऐसे लोग दुनिया से अल्लाह ताला सफा हस्ती से मिटा देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर भी पहले भी आया है ये बात सूरह अनाम में कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे लोगों की जड़ काट दी जो ऐसे सरकश थे, इनको निशाने इबरत बना दिया, खास कम जहां पाक। व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा, और सलाम है उसके उन बंदों पर जिनको उसने चुन लिया। और वो कौन है? अंबिया, अल्लाह ताला की तरफ से सलामती है उन पर। उन्होंने कैसी कैसी बातें नहीं सुनी और कैसे कैसे हालात नहीं देखे, फिर भी वो जमे रहे और अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते रहे और ज़रा भी उसमें कोताही नहीं की, उनके लिए सलामती है। लेकिन जो इस रास्ते भी चलेगा अल्लाह ताला उनको भी सलामती में रखेगा इंशाल्लाह, जो अंबिया के रास्ते पे चलते हैं। और इसमें सहाबा कराम के लिए भी मैसेज है क्योंकि वो अंबिया के वारिस हुए, वो उनके रास्ते पर चलते रहे, उनके पैगाम को आगे लेके चलते रहे। इसीलिए सुफियान सौरी कहते हैं कि असहाबे अंबिया के लिए नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला ने जैसे इन पैगंबरों को बचा लिया तो उसने, अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक पैगाम दे दिया कि जो उनके फॉलोअर्स भी होंगे उनके लिए भी सलामती होगी जिनको अल्लाह ने चुन लिया। तो सहाबा कराम तो हैं ही हैं, अंबिया तो हैं ही हैं, उनके लिए तो सलामती है ही, अल्लाह ताला उनको भी इंशाअल्लाह सलामती देगा जो इनको अपना हीरो बनाते और इन्हीं को फॉलो करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून, क्या अल्लाह बेहतर है यहाँ वो जो शरीक ठहरा रहे हैं ये, या जिनको ये शरीक ठहराते हैं वो बेहतर है, यानी जो बुत हैं या जो भी अल्लाह के सिवा जिसकी भी कोई पूजा करता है, जिसको भी कोई अल्लाह के साथ शरीक करता है, क्या वो बेहतर है या अल्लाह बेहतर है? उन्होंने तो आके इनको बचाया ही नहीं, कौमों को जो शिर्क करती थी, आते ना वो बचाते, ये कौमें तो तबाह हो गई, वो बुत वहीं पड़े रह गए, या जिनको भी कोई पुकारता है बचाता क्यों नहीं फिर उनको? क्या फिर वो इस लायक हैं कि उनकी इबादत की जाए? अल्लाह तो सलामती देता है उनको जिनको वो चुन लेता है, क्या जिनके साथ ये जो बुत हैं या जो अंबिया की पूजा करता है या जो मलाइका की पूजा, क्या उन्होंने भी आके इनको बचाया, उनको सलामती देते हैं जब ये तबाह हो रहे थे? तो तवज्जो के काबिल ये बात है, सवाल है कि कौन बेहतर है फिर बताओ। और इसके अंदर ही जवाब है, क्योंकि किसी ज़माने का भी मुशरिक ऐसा नहीं जो ये कहेगा नहीं हमारे ही बुत ही बेहतर हैं अल्लाह ताला से। हर एक कहेगा, जो भी इवन जो शिर्क करने वाले भी हैं वो भी एक एंटिटी को बड़ा मानते हैं कि कोई एक है जो सबसे बड़ा है, तो वो भी यही कहेंगे अल्लाह, यानी वो सबसे बड़ा जो महादेव जो है वो अपने मुताबिक उस नाम लेते हैं, लेकिन क्या वही उस एक ही खुदा को रहे होते हैं? और आगे फिर इसके ऊपर दलाइल आएंगे जो अगले पारे में इंशाल्लाह, जिसके बाद इंसान लाजवाब हो जाता है कि अभी कौन है फिर अल्लाह के सिवा। یہاں پہ آج ہمارا پارا مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لے کر آئے, گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے, اور اس کی طاقت ہم میں نہیں, اللہ تعالیٰ ہی ہمیں محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے پہ چلا دے. تلاوت سنیے.
يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني
ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى